श्लोक आवृत्तिमेव संघात गोचराम यमकं विदुः तत्तु नैकांत मधुरमतः पश्चाद विधास्यते। वर्णों के समूह की आवृत्ति को ही यमक के रूप में जानते हैं, किंतु वह यमक केवल मधुर आह्लादक नहीं होता, इसलिए उसका विधान बाद में सामान्य शब्द अलंकार में किया जाएगा। वर्णावृत्ति का ही एक भेद यमक होता है। अनुप्रास में इक्के दुक्के वर्णों की आवृत्ति अपेक्षित होती है, किंतु यमक में वर्णों के संघात रूप पदों या उनसे निबद्ध पदों की आवृत्ति होती है। यह यत्न साध्यता तथा अर्थानुसंधान की भी अपेक्षा के कारण कभी कभी श्रोता को कष्टकारक भी हो जाता है, अर्थात यह एकांततः आह्लादक नहीं होता। अतः यह यदि काव्य में शोभा का आधान करता भी है तो सामान्य अलंकार ही है, विशेष अलंकार अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए इसका प्रतिपादन सुकर एवं दुष्कर शब्द अलंकारों के प्रकरण के आदि में तृतीय परिच्छेद में 77 श्लोक में किया गया है। प्रसंग प्राप्त अनुप्रास एवं यमक पर कुछ विचार अपेक्षित हैं। भरत ने शब्द अलंकारों के उपलक्षणार्थ यमक का परिगणन एवं निरूपण किया है। शब्द की आवृत्ति यमक है। शब्द से यहाँ उच्चार्य वस्तु अभिप्रेत है, जो अभिनव गुप्त के अनुसार वाक्य पद अथवा पदैक देश वर्ण हो सकती है। इससे अनुप्रास भी उपलक्षित है। अनुप्रास का पृथक निरूपण भामा के काव्यालंकार में सर्वप्रथम उपलब्ध होता है। यो उनके कथन से सूचित होता है कि उनसे पूर्व अनुप्रास का निरूपण प्रारंभ हो चुका था। समान रूप वाले वर्णों के विन्यास को अनुप्रास कहते हैं, कहकर उद्घृत यह लक्षण या तो भामा से पूर्ववर्ती किसी ग्रंथ से उद्घृत है या दंडी के यया कयापि श्रुत्या यत् समान मनुभूयते तद्रुपादि पदासक्ति सानुप्रासा रसावहा। कथन में घृत अनुप्रास लक्षण का अत्यंत संक्षेप है। अपरे मन्यते इच्छन्त्य परे से उद्घृत ग्राम्य एवं लाटीय अनुप्रास दंडी में उपलब्ध नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि अनुप्रास का भामह द्वारा प्रथम घृत लक्षण भी दंडी सम्मत लक्षण नहीं है, वह किसी अन्य आचार्य को सम्मत लक्षण हो सकता है। अनुप्रास निरूपण की परंपरा इसके बाद हमें भट्टो भट्ट के काव्यालंकार सार संग्रह में उपलब्ध होती है। वहां अनुप्रास के तीन भेद बताए गए हैं, छे का अनुप्रास, परुषा, उपनागरिका, कोमला अथवा ग्राम्य नामक त्रिविध वृत्तियों के भेद पर आधारित त्रिविध अनुप्रास तथा लाटानुप्रास। उद्भट के द्वितीय अनुप्रास को परवर्ती काल में इसकी आधार वृत्तियों के कारण वृत्ति अनुप्रास कहा गया। भामह ने ग्राम्य अनुप्रास से संभवतः इसी परंपरा के वृत्ति अनुप्रास का उल्लेख उपलक्षणार्थ किया है। दंडी के दो लक्षण में से प्रथम लक्षण अनुप्रास का विशिष्ट लक्षण है, किंतु कालांतर में भेदोपभेद विधान के अनंतर यह श्रुति अनुप्रास कहलाने लगा। दंडी का दूसरा लक्षण संभवतः उद्भट के द्वितीय अनुप्रास नामक भेद का पूर्ववर्ती है, यही बाद में वृत्ति अनुप्रास के नाम से परिनिष्ठित हुआ। इस अनुप्रास का परुषावृत्ति वाला परुष भेद गौण प्रिय है तथा कोमल अथवा ग्राम्य अनुप्रास नामक भेद वैदर्भ मार्ग के कवियों को प्रिय है। अनुप्रास का दंडी का प्रथम लक्षण वैदर्भ मार्ग में प्रिय है। उनका अनुप्रास का द्वितीय लक्षण अंशतः वैदर्भ मार्ग में तथा अंशतः गौण मार्ग में इष्ट है। अग्नि पुराण में दंडी के प्रथम अनुप्रास लक्षण को ही श्रुत्या के स्थान में वृत्या रख कर दिया है। इससे अग्नि पुराणकार ने उद्भटाश्रित द्वितीय अनुप्रास की परंपरा को दंडी के प्रथम अनुप्रास से एकाकार करने का प्रयास किया है। यह अग्नि पुराण पर दंडी के प्रभाव का सूचक है। सरस्वती कंठाभरण में यह प्रभाव पूरी तरह प्रकट हुआ है। उन्होंने दंडी के द्वितीय अनुप्रास लक्षण को अक्षुण्णतया उद्घृत करके प्रथम अनुप्रास को श्रुति अनुप्रास नाम दिया है। यह सब अनुप्रासों का नायक है। इतना ही नहीं, वैदर्भी पद्धति इसी अनुप्रास से सनात है। भगवती सरस्वती किसी भी प्रतिभा संपन्न कवि के समाहित चित्त में उसके पुण्यों के फलस्वरूप यह अनुप्रास स्थापित करती हैं। जिस प्रकार ज्योत्सना शरश्चंद्र को लावण्य, अंगना को शोभा युक्त करता है, उसी प्रकार यह अनुप्रास काव्य को शोभा युक्त करता है। अभिप्राय यह है कि मूल अनुप्रास वृत्त अनुप्रास ही है। उद्भट ने सामान्य अनुप्रास नाम से तो इसका निरूपण किया ही है। रुद्रट ने भी अनुप्रास के इसके अतिरिक्त और कोई भेद नहीं बताए। हाँ, वृत्तियां तीन की जगह पांच बताई है। अग्निपुराण में वृत्ति अनुप्रास ही अनुप्रास नाम से विस्तरेण दिया है। अन्यत्र लाटिया नाम से प्रसिद्ध अनुप्रास अग्निपुराण में बिना नाम के दिया है। वृत्ति अनुप्रास के बाद दंडी प्रोक्त प्रथम समान श्रुति पदाशक्ति अनुप्रास आता है, जिसे दंडी ने अधिक रसावह होने के कारण माधुर्य गुण का कारण विशेष अलंकार माना है। शेष छेक लाटीय अनुप्रास इन पूर्वोक्त दो विशेष एवं सामान्य अनुप्रासों से अवांतर है। लाटानुप्रास वस्तुतः यमक से ही विकसित हुआ है, इसीलिए भोजने लाटानुप्रास के उतने ही भेद बताए हैं जितने कि यमक के होते हैं। दो वर्णों की आवृत्ति पर आधारित छेकानुप्रास भी तत्वतः वृत्त्यानुप्रास से भिन्न नहीं है। इस प्रकार दंडी के अनुसार शब्दगत माधुर्य का निरूपण संपन्न हुआ। श्लोक कामम सर्वोप्यलंकारो रसमर्थे निशंचति तथाप्य ग्राम्यते तैवैनम भारम वहति भूयसा। यद्यपि सभी अलंकार अर्थ में रस का निषेध करते हैं, तथापि ग्राम्यत्व का विपर्य ही इस भार को अधिक मात्रा में वहन करता है। शब्दगत माधुर्य का निरूपण करने के पश्चात आचार्य दंडी ने अर्थगत माधुर्य का निरूपण श्लोक में किया है। इष्ट अर्थ की गमक पदावली काव्य का शरीर होता है, यह काव्य लक्षण के प्रसंग में कहा जा चुका है, अर्थात इसमें प्राण भूत तत्व अर्थ होता है। काव्य की शोभा के कारण धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये तत्व अलंकार चाहे शब्द हो चाहे अर्थ, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वे सब अर्थ में आह्लाद का आधान अवश्य करते हैं। शब्दगत दोष से काव्य के अर्थ की आह्लादकता भी कम होती है, अतः प्रकृति में सभी अलंकारों से मुख्यतः तो अर्थगत विशेष और सामान्य अलंकार अभिप्रेत है, पर गौणतः शब्दगत अलंकार भी अभिप्रेत है। दोष काव्य की शोभा का विघात करते हैं, अतः काव्य में आह्लादकता का विघात करते हैं। दोषों का अभाव होने से तथा शोभा कारक धर्मों के प्रयोग से काव्य अत्यंत सरस हो जाता है। दोषों में भी सर्वाधिक शोभा विघातक दोष ग्राम्यता है। ग्राम्यता से गंवारपन का सूचक ऐसा प्रयोग अभिप्रेत है जो सभ्य लोगों में सुनने अथवा समझने में निंद समझा जाता है। बहुत प्राचीन काल से ही सत्ता के केंद्र नगर हो गए थे, परिणामतः नगर श्री के केंद्र बनते चले गए और ग्राम श्री रहित सपाट अकृत्रिम अपरिष्कृत रहन सहन के। यही कारण है कि कामसूत्र आदि में सभ्य शिष्ट सुसंस्कृत लोगों के लिए नागरक शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है और उनका वृत्त जन व्यवहार का आदर्श माना गया है। लज्जा घृणा और अमंगल को प्रकट करने वाले प्रयोग समाज में अश्रार श्री रहित अश्लील समझे जाते हैं और उन्हें ग्राम्य कहा जाता है, अतः काव्य में उनका परिहार आवश्यक होता है। इस परिहार को ही अग्राम्यता ग्राम्यता का विपर्य अर्थात ग्राम्य के विपरीत नागरक प्रकार से व्यवहार करते हैं। श्लोक श्लोक कन्ये कामयमानं माम न त्वं कामयसे कथम इति ग्राम्यो अयमर्थात्मा वैरस्या यैव कल्पते। हे कन्ये, मुझे चाहने वाले को तू क्यों नहीं करती, रि गवारसा कथन वैरस्य कारक ही होता है। यह अग्राम्यता दो प्रकार की होती है, अर्थगत और शब्दगत। अर्थ में रस का निषेक अर्थगत अग्राम्यता से आता है। उत्कृष्ट होने के कारण आचार्य ने पहले उसका निरूपण व्यतिरेक और अन्वयी उदाहरण से किया है। उन्होंने प्रणय निवेदन की दो पद्धतियां प्रस्तुत की हैं। एक, कन्ये कामयमानं माम न त्वं कामयसे कथम। कथन में प्रेयसी के लिए कुमारी के पर्याय कन्या का संबोधन में प्रयोग कन्या कमनीया भवति निर्वचन की दृष्टि से तो उचित है, किंतु लोक में कन्या का प्रयोग पुत्री के लिए अधिक होता है, प्रेयसी के लिए नहीं। अतः प्रथम तो यह संबोधन ही अवसर के उपयुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त सीधे सपाट ढंग से प्रणय निवेदन भी श्रृंगार की कोमल अभिव्यक्ति के विपरीत गवार अभिव्यक्ति है। इसे सुनकर व्रीड़ा की अनुभूति होती है, इसलिए यह अश्लील प्रयोग ग्राम्यत्व दोष से युक्त है और श्रृंगार के विपरीत है। श्लोक कामं कंदर्प चंडालो मयि वामाक्षि निर्दयः त्वयि निर्मत्सरो दिष्टये त्यग्राम्यो अर्थो रसावः। तिरक्षी चितवन वाली है चांडाल, काम चाहे जितना निर्दय हो मुझ पर, मैं खुश हूँ, कोई रोष नहीं इसको तुझ पर। यह गवारपन के विपरीत सभ्य प्रकार से कही हुई बात रस प्रदान करती है। कामम कंदर्प चंडालो दिष्टया, प्रणय निवेदन में प्रेयसी के लिए वामाक्षी संबोधन उसके सौंदर्य की प्रशंसा के कारण श्रृंगार के अनुकूल है। विवेक रहित और क्रूर कर्मा कंदर्प पर चंडाल का आरोप भी बहुत सभ्य प्रयोग है। मैं प्रेम में व्याकुल हूँ, तुम उससे सर्वथा निर्मुक्त हो, इस प्रकार के अर्थ को सुंदर उदार प्रकार से प्रकट किया गया है। दिष्टया, बड़ी खुशी की बात है, कहकर विपरीत लक्षणों से कंदर्प के अविवेकपूर्ण कार्य के लिए आक्रोश व्यक्त करके वस्तुतः प्रेम नहीं करने वाली प्रेयसी के प्रति ही आक्रोश व्यक्त किया गया है। इससे प्रिया के प्रति नायक के प्रेम की अभिव्यक्ति पुष्ट होती है। इस तरह ग्राम्यत्व के विपरीत सभ्य प्रकार से किया गया यह निवेदन मोटे तौर पर प्रथम अभिव्यक्ति के तुल्य होते हुए भी गुणवत्ता की दृष्टि से उससे नितांत विपरीत है, रसावह है। श्लोक शब्देपि ग्राम्यतास्तेव सा सभ्येतर कीर्तनम् यथा यकारादि पद रत्युत्सव निरूपणे। ग्राम्यत्व शब्द में भी होता ही है, वह सभ्य के विपरीत असभ्य शब्द का उच्चारण होता है, जैसे सुरतोत्सव के वर्णन में आदि में य वर्ण वाला याह पद है। अर्थगत माधुर्य गुण का प्रतिपादन करने के बाद आचार्य दंडी ने शब्दगत माधुर्य की व्याख्या व्यतिरेक मुखेन 65-67 श्लोक में की है। ग्राम्यत्व दोष का विपर्यय रसावह होता है। इस प्रकरण में शब्दगत ग्राम्यता का निरूपण लक्षणोदाहरण से किया गया है, अतः उसके व्यतिरेक से शब्दगत अग्राम्यता आती है, यह आचार्यों का अभिप्राय है। शब्दगत ग्राम्यता 3 प्रकार की होती है। सभ्य समाज में जिनका प्रयोग वर्जित माना जाता है, व्रीड़ा जुगुप्सा का जनक और अमंगल का सूचक माना जाता है, उन शब्दों का काव्य में प्रयोग ग्राम्यता दोष है। जैसे मिलन के वर्णन में रमण सूरत निधुवन संप्रयोग आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इनमें से अधिकांश शब्द सभ्य समाज में स्वीकृत हैं, परंतु यप का प्रयोग दंडी के समय में असभ्य माना जाता था, अतः उससे निष्पन्न यभन आदि सुबंत या तिगंत पदों का प्रयोग ग्राम्य माना जाता था। इस अर्थ में मुल्तानी भाषा में आज भी प्रयुक्त है। इस प्रकार के प्रयोग वाला साहित्य घासलेटी अथवा अश्लील समझा जाता है। कुछ शब्द सभ्य समाज में प्रयुक्त होते हैं, कुछ नहीं। ग्राम्यता की यह धारणा देश काल भेद से परिवर्तनशील है। विवाह के अवसर पर वर के द्वारा पठित एक ऋचा का अर्थ यदि आज विवाह मंडप में सुनाया जाए तो अश्लील समझा जाएगा।